ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురుమిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణరఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణచైతన్యదేవం శ్రీరాధాకృష్ణపదాన్ సహగణలలితా శ్రీవిశాఖాన్వితాంశ్చ. నమావోమిష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదీ పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గోరద్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోసుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరీ వృషభానుసుతే దేవీ ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసది గౌర భక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. తో అసీమ్ కృష్ణ ప్రభునే పర్మిషన్ దియా కి హిందీ మే క్లాస్ ఖరీదనా హై. ఐల్ ట్రై మై బెస్ట్. సో హమ్ పండ్ రే శ్రీల ప్రభుపాద లీలామృత సే. హరే కృష్ణ. తో యహా పే పఢ్ రహే హమ్ జబ్ జబ్ శ్రీల ప్రభుపాద్ సబ్ హిప్పీయో కో ఆమంత్రిత్ కర్తే హై హరే కృష్ణ ఆందోళన్ మే భాగ్ లేనే కే లియే. శ్రీల ప్రభుపాద్ నే అప్నే మంజరే ఉఠాయే కపడే కే ఫీతే తర్జనీ ఉంగ్లియో మే లపేట్ లియే ఔర్ అప్నే యువా అనుయాయి కి ఓర్ దేఖా జో పాల్థీ మార్ కర్ గాలీచే పర్ బైఠే తే. సభీ దాఢీ రఖే తే ఔర్ లగ్భగ్ సభీ కే బాల్ లంబే తే. సభీ మాలాయే విచిత్ర కపడే ఔర్ ఛల్లే పహనే తే. భీతరీ ఛత్ సే లటక్తే బల్బ్ జాపానీ కాగజ్ సే బనే లాల్టెనో మే సే మంద ప్రకాశ్ వికిరణ కర్ రహే తే ఔర్ ఉన్కీ రస్సియో సే నవ హో చిన్న ఝూల్ రహే తే. ప్రభుపాద్ నే ఏక్ దో తీన్ తాల్ బజానా శురూ కియా ఔర్ శ్యామ్ సుందర్ హార్మోనియం మే హవా భర్నే లగా. యద్యపి హార్మోనియం ఛోటే పియానో కీ ప్రకార్ కా ఏక్ బహుత్ సరల్ వాద్యయంత్ర హై జిస్కా కీబోర్డ్ దాహినే హాత్ సే బజాయా జాతా హై ఔర్ బాయే హాత్ సే ధోక్నీ ద్వారా ఉస్మే హవా భరీ జాతీ హై. లేకిన్ ఫ్రెడరిక్ స్ట్రీట్ స్టోర్ ఫ్రంట్ మే ఉసే బజానా కోయీ నహీ జాంతా థా. ఇస్లియే వహ మాత్ర భిన్భినాహట్ హోకర్ రహతా థా. భారత్ సే లాయా గయా ఏక్ దూసరా మహత్వపూర్ణ కీర్తన్ వాద్యయంత్ర దో సిరో వాలా మృదంగ్ థా. ఉసే సంగీత్ కీ పేచిదా లయ నికాలీ జాతీ థీ కింతు ముకుంద్ భీ ఉస్కా బహుత్ సాధారణ ప్రయోగ్ ప్రభుపాద్ కే మందిరో కే ఏక్ దో తీన్ కే సాథ్ దేనే మే కర్ సక్తా థా. మందిర్ మే కుచ్ ఔర్ భీ వాద్యయంత్ర ప్రాప్త థే జైసే తాషా యా నక్కారా జిస్ పర్ మందిర్ కో గర్వ్ థా. హయగ్రీవ్ కా పురాణ నగాడా కుచ్ శంఖ్ ఔర్ ఏక్ తురహీ జిసే హయగ్రీవ్ నే సముద్ర తట్ పర్ మిలే लकड़ी के एक टुकड़े से बनाया था। कुछ अतिथि अपने निजी यंत्र जैसे बांसुरी, मुरली, बोंगो आदि लाए थे, लेकिन इस प्रकार सभी बाजे बंद थे। सभी श्रील प्रभुपाद की संध्या वंदना में निकलती लय के साथ तालियां बजा रहे थे। प्रभुपाद की संस्कृत प्रार्थना में वैष्णव गुरुओं के की प्रशस्ति गाई गई। शिष्य परंपरा के हर महान गुरु के लिए उन्होंने विशिष्ट प्रशस्ति गाई। सर्वप्रथम उन्होंने श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के दिव्य गुणों का काव्य गान किया, तब एक एक करके गौर किशोरदास बाबा जी और भक्ति विनोद ठाकुर की वंदना की। एक प्रार्थना में श्रील भक्ति सिद्धांत को पतित आत्माओं का उद्धार करता बताया गया। दूसरी प्रार्थना में गौर किशोरदास बाबा जी को त्याग मूर्ति और कृष्ण के वियोग और गहरे प्रेम में भाव विभोर कर किया गया। प्रभुपाद ने गौर वर्णीय भगवान चैतन्य का गुणगान किया जो कृष्ण के निर्मल प्रेम का वितरण करते थे, और उन्होंने भगवान कृष्ण की वंदना की जो करुणा के सागर, दुखी जनों के सखा और सृष्टि के स्रोत है। प्रभुपाद जब भजन में निमग्न हो गए तब उनके शरीर आह्लाद से आंदोलित हो गया। फर्श पर बैठा भक्त समुदाय इस ओर से उस ओर झूमने लगा। वह देख रहा था कि प्रभुपाद के नेत्र ध्यान में बंद है और उनकी कोमल अभ्यस्त उंगलियां निपुणतापूर्वक मंजरे बजा रही थी। उन्हें उनके हृदय से निकलती हुई वाणी की ऐसी सूक्ष्म तरंगे और ध्वनियां सुनाई दी थी जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो यहां पे प्रभुपाद अलग अलग तरीके से कृष्ण भावना का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो हिप्पी लोग हैं वो संगीत में उनका बहुत रुचि है, तो पूरा कृष्ण भावना उन्होंने उनके लिए उनका रास्ता प्रशस्त हो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र को ऐसे प्रस्तुत किया कि एक संगीतमय कोई त्योहार मना रहे कोई। तो हम देखते हैं कि कैसे अलग अलग प्रकार के लोग, अलग अलग जगह से लोग आते थे प्रभुपाद के पास और भक्ति का प्रशिक्षण ले रहे थे। उनको ये भी पता नहीं था कि वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद ने उनको भक्ति में, भक्ति के आचरण में लगाया। तो आज स्पेशली सब लोग बहुत उत्साहपूर्ण, वेरी एक्साइटेड, क्योंकि आज हम मना रहे हैं पांडव एकादशी। तो असीम कृष्ण प्रभु बोले थे कि कुछ बताएं उनके एकादशी के बारे में, तो कुछ चीजों के ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एकादशी का मतलब है 11वां दिन। तो हर एक महीने में दो बार जब चंद्रमा, उसका क्षय होता है और उसका वृद्धि होता है, तो दो बार ये 11वां दिन आता है। जय श्री श्री राधा रास बिहारी जी की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गोनिताय की। तो एक तो है शुक्ल पक्ष में एकादशी आता है और दूसरा कृष्ण पक्ष में एकादशी आता है। तो ज्येष्ठ महीना जो ये अभी मई के करीब आता है, उसमें जो शुक्ल पक्ष है उसमें जो एकादशी आता है उसको पांडव एकादशी बोलते हैं। इसमें पांडव का अर्थ है, पांच पांडव नहीं, स्पेशली एक जो पांडव थे वो है भीम। वो अपने गदा के लिए भी प्रसिद्ध थे और प्रसाद लेने के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। तो क्योंकि वो, उनके लिए बहुत कठिन काम था एकादशी का व्रत का आचरण करना, पूर्णता कुछ खाए बिना, तो एक दिन उन्होंने व्यासदेव उनसे वार्तालाप किया कि क्या मैं क्या कर सकता हूं इसके बारे में, कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं जो भी, क्योंकि 24 बार पूरे साल में एकादशी आता है, तो उसका कैसे मैं जो भी उसे फायदा होता है वो ग्रहण कर सकता हूं। तो फिर व्यासदेव ने उनका स्थिति देख के ये बताया उनको कि ये जो शुक्ल पक्ष में जो ज्येष्ठ मास के एकादशी आता है उसमें अगर आप उसका पालन करते हो अच्छे से, तो फिर आपको उतना ही क्रेडिट मिलेगा जितना आप बाकी सब अलग अलग जितने भी एकादशी आती हैं अलग अलग नाम से, वो सब आपको प्राप्त हो सकता है। तो तब से 5000 साल से ये एकादशी को पांडव एकादशी से मनाया जाता है, और अलग अलग भक्त अलग अलग तरीके से इसको मनाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में, जैसे जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है भक्ति रसामृत सिंधु, उसका जिन्होंने संक्षेप में प्रभुपाद ने लिखा है उसके ऊपर, भक्ति रसामृत सिंधु का जो पुस्तक है उसमें लिखते हैं कि ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखते हैं कि जो भी कोई एकादशी का पालन करता है उसके पहले के जितने भी पाप कर्म हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, और वो एक जो अच्छा जीवन का जो राह है वो खुल जाता है उसके लिए। तो इसीलिए भगवान भी इसके बारे में चर्चा करते हैं 11वें स्कंध में एकादशी के बारे में। तो हम को प्रभुपाद ने ये एक चीज दिया है एकादशी व्रत का पालन करने का, क्यों? क्योंकि वो जो नेक्टर ऑफ डिवोशन है भक्ति रसामृत सिंधु उसमें 64 अलग अलग चीजें दिए हैं रूप गोस्वामी ने कि भक्ति का कैसे अनुसरण कर सकते हैं, भक्ति कैसे कर सकते हैं, क्या विधि है उसके। तो उसमें से एक विधि है एकादशी का पालन करना, जैसे अलग अलग विधि है भगवान की प्रार्थना करना, भगवान के विग्रहों का दर्शन करना, भगवान के हरि नाम का जप करना, भगवान को प्रणाम करना, वैसे ही एकादशी का व्रत करना वो भी एक अंग है, वो भी एक विधि है भक्तिमय क्रिया करने का। तो मैं सुन रहा था कि हिज होलनेस गिरिराज स्वामी महाराज लिखते हैं एक जगह पे कि जब हम एकादशी का जब हम कर रहे हैं तो ये समझ के कर रहे हैं कि सिर्फ उपवास करना ये एकादशी का लक्ष्य नहीं है, कृष्ण के बारे में चिंतन करना, कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना वो एकादशी का उद्देश्य है। तो हम जो एकादशी करते हैं वो एक शुष्क तरह से कोई तपस्या नहीं करते, लेकिन हमारा एकादशी का उद्देश्य यही है कि हम कृष्ण भावना में प्रगति करें। तो वो उद्देश्य सामने रख के हमको एकादशी का अंगीकार करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि भागवतम में भी बहुत जगह पे एकादशी का उल्लेख आता है। जैसे अम्बरीश महाराज ने एकादशी किया था, और वो प्रसंग आता है कि दुर्वास मुनि जब पारणा समय था दूसरे दिन, तो दुर्वास मुनि आए और वो ऐसे समय पे आए जहां जो पारणा समय था, और दुरासा मुनि नहाने के लिए चले गए और अम्बरीश महाराज के ऊपर बहुत बड़ा कठिन प्रसंग आया, क्योंकि उनको पारणा समय जा रहा था, एकादशी को जो धान लेके उसको ब्रेक करना था, और जो उनके अतिथि है वो बाहर गए थे, वो आने से पहले वो कुछ खा नहीं सकते थे। तो उन्होंने जब सलाह की उनके जो भी मंत्री है, जो भी ऋषि मुनि है, तो वो भी सोच रहे थे कि अभी क्या करें। तो फिर एक मार्ग निकला उसमें से कि जो भगवान का चरणामृत है, जो पानी है, वो अगर हम लेते हैं तो दैट इज लाइक ब्रेकिंग ऑल्सो नॉट ब्रेकिंग ऑल्सो। तो उन्होंने फिर थोड़ा पानी लेके ले लिया, और हम बाद में देखते हैं कि कैसे जो अम्बरीश महाराज के ऊपर बहुत अप्रसन्न हुए हैं दुर्वासा मुनि, और फिर वो कथा आता है कि कैसे वो उन्होंने उनको इतने अप्रसन्न हुए कि उन्होंने उनको मारने का भी प्रयास किया। और दूसरा चैतन्य चरितामृत में भी ये प्रसंग आता है कि कैसे, बहुत अच्छा ये, मैं भी ये आदि लीला में 15वें जो चैप्टर में आता है 8th श्लोका, तो ये एकादशी के बारे में चैतन्य महाप्रभु कैसे आग्रह कर रहे हैं एकादशी व्रत का पालन करने का। तो यह प्रसंग आता है जब चैतन्य महाप्रभु बहुत छोटे थे, स्कूल में जाया करते थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो एक दिन अपने माता के चरण कमल में गिर जाते हैं वो, और माता को बहुत नम्रतापूर्वक प्रार्थना करते हैं, बोलते हैं एक दिन माता रपदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। एक दिन चैतन्य महाप्रभु अपने माता के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि आप मुझे एक दान दीजिए। क्या है वो दान? बोलते हैं माता बले ताई दिब या तुमी मागी बे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न ना खाई बे। तो उनके माता ने पूछा, मेरे प्रिय आप जो मांगेंगे मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूं। तो भगवान बोलते हैं प्रिय माता, आप इतना ही दान मुझे दीजिए कि आप एकादशी के दिन जो ग्रेन्स है वो मत खाइए, जो भी धान्य है वो मत खाइए। तो यहां पे प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड श्री चैतन्य महाप्रभु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेंस ऑफ अ फास्ट ऑन एकादशी डे। इन द भक्ति संदर्भ बाय श्री जीव गोस्वामी देर इज अ कोटेशन फ्रॉम स्कंद पुराण admonishing that a person who eats grains on Ekadashi becomes a murderer of his mother, father, brother and spiritual master. And even if he is elevated to Vaikuntha planet, he falls down. On Ekadashi, everything is cooked for Vishnu, including regular grains and dal. But it is enjoined that a Vaishnava should not even take Vishnu Prasad on Ekadashi. It is said that a Vaishnava does not accept anything eatable that is not offered to Lord Vishnu. But on Ekadashi, a Vaishnava should not touch even Mahaprasadam offered to Vishnu, although such prasad may be kept for being eaten the next day. It is strictly forbidden for one to accept any kind of grain on Ekadashi, even if it is offered to Lord Vishnu. So, Prabhupada यहाँ पे बोलते हैं कि जो भी हमारे अलग-अलग वैदिक शास्त्र हैं, उसमें लिखा है कि एकादशी का पालन न करना ये बहुत सीरियस उसको लिया जाए गया है, तो वहां भी बोलते हैं कि अगर कोई एकादशी पालन नहीं कर रहा है तो एक घृणित काम है, और वो ऐसा है कि कोई अपने माता पिता को, अपने गुरु को वो हत्या कर रहा है। इसलिए प्रभुपाद यहां पे बता रहे हैं कि जो वैष्णव आचार संहिता है उसके द्वारा जो भी प्रसाद भगवान को अर्पण होता है, जैसे एकादशी के दिन भी भगवान को एकादशी नहीं करवाते हम, एकादशी भक्तों के लिए होता है, तो भगवान के लिए जो कुकिंग होता है उसमें राइस दाल सब्जी चपाती सब होता है, तो वो प्रसाद जब भोग भगवान को अर्पण होता है तो वो महाप्रसाद भी चैतन्य महाप्रभु ने उनके जीवन में ये सिखाया था कि जो भक्त हैं वो महाप्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं, दूसरे दिन कर सकते हैं तो वो रखते हैं, एक दिन दूसरे दिन कर सकते हैं। तो एक दिन ऐसे ही हुआ था कि चैतन्य महाप्रभु जब थे तो जब उनका शाम का कीर्तन चल रहा था तो किसी ने, एकादशी था तो कोई महाप्रसाद लेके आए, तो महाप्रसाद जब आए चैतन्य महाप्रभु ने लिया, और ऐसा है कि महाप्रसाद का तुरंत आदर करना चाहिए उसको लेके, उसका गुणगान करके, तो महाप्रभु ने महाप्रसाद का गुणगान चालू किया, वो गुणगान रात भर चला, उसके बाद में लिया फिर उन्होंने तो महाप्रभु ने सिखाया हमको कि एकादशी के दिन हम जो नॉर्मल जो धन है वो हम लेते नहीं। आगे कहते हैं, सची कहे ना कहिब भालये कहिल, सेई है ते एकादशी करिते लागिल। मदर सचिन, सची माता बोली, आपने बहुत अच्छा बात किए हैं, मैं अभी से एकादशी के अवसर पर धान्य ग्रहण नहीं करूंगी। उस दिन से उन्होंने फिर एकादशी का पालन चालू किया। उसका मतलब क्या है कि उससे पहले सची माता एकादशी नहीं करती थी? ये जो स्मार्त ब्राह्मण है उनमें ये प्रथा प्रचलित है कि जो विधवा स्त्री है, प्रभुपाद यहां पे प्रपोर्ट में लिखते हैं, वो एकादशी को बिना कुछ खा के उसका पालन करना चाहिए, और उनका खुद का एक स्टैंडर्ड है कि जो विधवा स्त्री नहीं है, सधवा है, वो खा सकती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो एकादशी पालन करना इतना जरूरी नहीं है। तो क्योंकि उस टाइम वो प्रथा प्रचलित थी बंगाल में कि जो विधवा स्त्री या थी वो एकादशी पालन करती थी, जो सधवा है वो पालन नहीं करती थी। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि, वहां पे चैतन्य महाप्रभु ये सिद्धांत प्रस्थापित कर रहे थे कि वो जो प्रथा है वो स्मार्त कैटेगरी की है। तो वैष्णव जो सिद्धांत के ऊपर जो प्रथा है वो है कि एकादशी का पालन करना चाहिए। तो क्योंकि एकादशी, ये एकादशी का बहुत बहुत पुस्तकें हैं एकादशी महात्म्य के ऊपर, ये वो, तो हम थोड़ा देखेंगे कि प्रभुपाद एकादशी के बारे में क्या हमको जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनके, या क्या बताते हैं हमको कैसे उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग आचार्य भी एकादशी के बारे में लिखते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं एकादशी के बारे में उनके एक वैष्णव गीत में, किसे पता है? हाँ, वो लिखते हैं, माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, कृष्ण वसती वसती बोली परम आदरे बोरी। तो बोलते हैं कि माधव तिथि, माधव तिथि मतलब जो अलग अलग दिन है जो आध्यात्मिक रूप से हम मनाते हैं, जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, गौर पूर्णिमा, नित्यान त्रयोदशी, एकादशी, सो दीज आर ऑल कॉल्ड एज माधव तिथि। तो ये माधव तिथि भक्ति जननी, जब हम ये अच्छी तरह से उनका हम पालन करते हैं, उससे भक्ति का स्रोत होता है। इसलिए उनको भक्ति जननी बोला है कि जो भी ये अलग अलग उत्सव होते हैं भक्ति में, तो उत्सव में भाग लेने से ही भक्ति जागृत होता है। इसलिए प्रभुपाद ने ये भक्ति जागृत करने के लिए पूर्ण जागतिक रूप से एक बड़ा फेस्टिवल चालू किया। क्या है वो? जगन्नाथ रथ यात्रा। तो वो भी एक माधव तिथि है जब हम उसका पालन करते हैं, तो जो भी कोई उसमें भाग लेता है उसको तुरंत भक्ति उसका स्टार्ट होता है। तो ये जो एकादशी है वो भी एक माधव तिथि है जो भगवान को बहुत प्रिय है। कोई उसका आचरण करता है तो तुरंत भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होके उसको कृपा प्रदान करते हैं ताकि वो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे यहां पे चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि जो एकादशी पालन करना कितना महत्वपूर्ण है, और वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जब हम एकादशी का पालन करते हैं या अलग अलग भक्ति के विधियों का पालन करते हैं, तो पालन करते वक्त जो तपस्या हम करते हैं भक्ति के विधियों का पालन करने में, उससे हमारे चित्त का मार्जन होता है। और जो मन है जो हमेशा यहां वहां भागते रहता है, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं अगर हम शारीरिक रूप से कुछ तपस्या करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। तो हमारे जीवन के ऊपर हमको नियंत्रण करना है, हमारे जो जीवन शैली है, तो सबसे पहला नियंत्रण होता है जो भी हमारा इंद्रिया है, और इंद्रियों में सबसे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला इंद्रिया है जो भक्तिवेदांत ठाकुर ही बोलते हैं उनके वैष्णव गीत में, इसे तार मध्ये जिह्वा अति लोभमय सुदूरमति ताके जेता कठिन संसारे। ये सुन के बहुत आनंद आता है क्योंकि उसके बाद प्रसाद होता है, लेकिन उसका मतलब है कि ये जो जिह्वा है वो छोटी सी है, 2 इंच का, लेकिन वो पूरे जीवन का रुख बदल सकती है, क्योंकि जो इंद्रियां हैं हमारी वो बहुत लालच होता है, ये खाना है वो खाना है। तो जब हम इंद्रियों को संयमित करते हैं, स्पेसिफिकली ऑन सच डेज एज एकादशी, उससे हम मन के ऊपर भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसलिए जितना हम कठोरतापूर्वक इसका पालन करते हैं एकादशी का वगैरह, उतना हमारा मन भी शांत हो जाता है, तो भक्तिमय जो कार्य है वो बहुत आसानी से हो सकते हैं। तो इसलिए हम देखेंगे कि अगर मन बहुत विचलित हो रहा है, अगर हम एकादशी करते हैं तो तुरंत वो शांत हो जाता है, क्योंकि जो मन और शरीर का वही कनेक्शन है। इसलिए भगवान बोलते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। तो इसलिए जब हम एकादशी का पालन करते हैं तो उससे पूरे भक्ति में हमारा उत्थान होता है। क्योंकि हमारे इंद्रिया कंट्रोल में होती है, मन कंट्रोल में आता है, तुसे भक्ति जो करना है वो बहुत इजी आता है। तो इसीलिए अलग अलग जगह पे हम देखेंगे अलग अलग तरह से ये एकादशी का पालन होता है। लेकिन प्रभुपाद यहां पे लिखते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं एकादशी डे देर इज नो ईटिंग सम्चुअसली, सिंपली यू टेक लिटिल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ट्राई टू अवॉइड दैट ऑल्सो, यू डोंट टेक इवन वॉटर, दैट इज रियल एकादशी, बट बिकॉज वी कैनॉट डू इट इन कलियुगा द टाइम इज डिफरेंट, देर फोर वी आर अलाउड टू टेक लिटिल फ्रूट एंड मिल्क विच इज कॉल्ड अनुकल्प। सो वी अंडरस्टैंड दैट द स्टैंडर्ड इज वेरी हाई दैट वी आर सपोज टू नो, एंड इफ समन कैन डू इट एज प्रभुपाद ऑल्सो सेज इन वन कन्वर्सेशन, एक जो उनका निजी वार्तालाप हो रहा था सुबह के समय, उसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई इसका पालन कर सकता है तो करना चाहिए। लेकिन वो बोले कि गलत रूप से उसको अनुकरण नहीं करना चाहिए, कि हम भी अभी स्पर्धा करेंगे गोस्वामी लोगों से। और तो प्रभुपाद बोले थे कि ऐसा मत कीजिए कि एकादशी करके पूरा दिन सो जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे बहुत भूख लगा है, कुछ कर नहीं सकता मैं, तो अभी सो जाऊंगा, तो एकादशी का जो उद्देश्य है वो उसे प्राप्त नहीं होगा। तो हम देखते हैं जब हम आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो पहले पहले तो तपस्या थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे हमारी तपस्या भी बढ़नी चाहिए। क्यों तपस्या बढ़नी चाहिए? इसलिए नहीं कि हमको शुष्क वैराग्य दिखाना है, लेकिन अगर वो आध्यात्मिक रूप से हमारा उन्नति हो रहा है उसमें, तो फिर उसको भी ग्रहण करना चाहिए। तो वो एक भी एक प्रिंसिपल है कि अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। अगर उससे हमारा भक्ति में वर्धन हो रहा है, भक्ति में उसका अच्छी तरह से बढ़ रहा है हमारा भक्ति उसके कारण, तो फिर उसको ग्रहण करने में हमको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो यहां पे तमाल कृष्ण महाराज प्रभुपाद को एक बार पूछ रहे थे कि क्या हमको एकादशी के दिन सबको 25 माला जप करना चाहिए। इसे तमाल कृष्ण महाराज सेज, आई रिमेंबर यू इंस्ट्रक्टिंग वंस दैट ऑल ऑफ योर इनिशिएटेड डिसाइपल शुड चैंट 25 राउंड्स। प्रभुपाद मिनिमम, तमाल कृष्ण मिनिमम ऑन दिस डे, is that a rule that we should all follow in our temples? Prabhupada said, we are 16 rounds. Tamal Krishna Maharaj says, no, I mean on Ekadashi. Prabhupada says, oh yes. So now Prabhupada is telling on Ekadashi day, not 16, not 25. He says, on Ekadashi day, simply you should chant, no other business. So, Tamal Krishna Maharaj bolte hain, to phir दूसरे सेवाएं प्रचार है उनका क्या होगा? सो देन प्रभुपाद सेज, नो, दोज आर प्रीचिंग नॉट फॉर देम, सेज दोज आर सिटिंग आइडल एवरीवन लव्स, सो आई हैव नो अदर रेगुलेशन, सिंपली प्रीचिंग। एंड देन प्रभुपाद आगे बताते हैं कैसे है? एक बार प्रभुपाद के गॉड ब्रदर, उनके गुरु भाई जो माधव महाराज, उनका पहले नाम था हयग्रीव प्रभु, जब वो गौड़ीय मठ में रह रहे थे तो उनको बाहर जाना था किसी प्रचार कार्य के लिए, तो बहुत उनका तबीयत ठीक नहीं था, तो तो एक भक्त भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास गए और बोले कि हयग्रीव प्रभु बाहर जा रहे हैं लेकिन उनका तबीयत खराब है और वो अभी कुछ खा नहीं सकते हैं। तो फिर उनके गुरु महाराज ने, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उन्होंने बोला कि ही सेड नो लेट हिम टेक इमीडिएटली मील्स एंड गो, जो कि नहीं वो उनको प्रसाद लेके जाने दो। तो प्रभुपाद यहां पे बता रहे थे कि कैसे जो एकादशी का हम जो व्रत का पालन करते हैं उसका जो मेन उद्देश्य जो है वो है भक्ति में प्रगति करना, कृष्ण की कृपा प्राप्त करना। तो हमारे जो भी चीजें हम करते हैं एकादशी के दिन, उससे भक्तिमय चेतना, कृष्ण की सेवा, उसमें बाधा नहीं आना चाहिए। तो वो प्रभुपाद यहां पे लिखते हैं। और प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि बहुत बार भक्तों के जीवन में होता है कि जब हम कुछ ऐसे तपस्या करते हैं तो दूसरे एक प्रभुपाद जी का ही एक उल्लेख आता है, जो गिरिराज महाराज एक बार बता रहे थे कि जब प्रभुपाद अमृतसर में थे तो जो नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु का नया बुक आया था, जस्ट प्रिंटिंग से होके आया था। तो प्रभुपाद उनके जो शिष्या थी यमुना माता जी, उनको बोले कि आप पढ़ो उससे। तो प्रभुपाद बैठे थे, यमुना माता जी वो पढ़ रही थी। तो उसमें आता है कि जब पढ़ रहे थे तो उसमें आया कि ऑन द डे ऑफ एकादशी डिवोटी रिमेन फास्टिंग ऑल नाइट एंड कंटिन्यूअसली चैंट ग्लोरी ऑफ लॉर्ड। तो कि एकादशी को कुछ भक्त खाते नहीं। और तो प्रभुपाद बोले थे कि देन यमुना माता जी, उन्होंने पूछा प्रभुपाद से कि क्या हम भी ये ऐसे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला कि नो, वी हैव टू मेनी सर्विसेज टू डू, बट देन द बेसिक ऑब्जर्वेंस ऑफ सच एकादशी इज दैट वी अवॉइड ग्रेन्स, वी अवॉइड एनी अदर ईटेबल्स। तो ये जो निर्जल एकादशी है जो हम कर रहे हैं, वो उसका फल तो बहुत है जब हम करते हैं। वो फल क्यों आता है? क्योंकि भगवान उसे प्रसन्न होते हैं। तो वो ध्यान में रख के हमको ये दिन जो पांडव एकादशी है, कि जितना हम पूर्ण रूप से ये एकादशी का में जप करने का, हमारे अलग अलग सेवाएं करने का प्रयत्न करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होकर हमको कृपा प्रदान करते हैं। और बहुत बार नहीं लेकिन कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि कभी कभी एकादशी हमारा छूट जाता है, जैसे ब्रेक हो जाता है अनजाने में, या कुछ खा लेते हैं। तो उस समय कैसे उसका निवारण करना है? तो वो भी जब प्रभुपाद, ये है 13 जनवरी 1976 कलकत्ता में ये एक बार ये प्रसंग हुआ। Here he says, because it was Ekadashi, we skipped breakfast and fasted until noon. But at lunch time, the devotees inadvertently broke the Ekadashi vow because the cook accidentally put peas into the vegetables. No one noticed until too late. So, क्या हुआ था कि एकादशी का व्रत पालन कर रहे थे, भक्त लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं लिया, लंच जब ले रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसमें मटर उसमें था, तो किसी को पता नहीं चला। लेकिन हरीश्वर प्रभु यहां पे बता रहे हैं कि जब वो आए प्रसाद लेके बैठ गए, और जब वो ग्रहण करने ही वाले थे, इस होलने जयपता का महाराज वहां से चिल्लाए, बोले कि मत खाओ उसको। तो उन्होंने क्या हुआ, बोला वो उसमें नॉन एकादशी ग्रेन्स दिस पीस आर देर। तो जब वहां पे तमाल कृष्ण महाराज भी थे, तो वो जब उनको पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ कि ऐसा हुआ। प्रभुपाद भी थे वहां पे कलकत्ता में, तो प्रभुपाद के पास गए, तो प्रभुपाद के पास गए और उनसे माफी मांगा और बोले कि ऐसा ऐसा हुआ। श्रीला प्रभुपाद टोल्ड अस दैट वी ऑल आर नॉनसेंस। प्रभुपाद बोले सो ही एंग्रीली रिबुक्ड अस, नाउ यू हैव टू फास्ट फॉर 3 days। बोले भी 3 दिन उपवास करो। दिस शुक्ड एवरीवन। यस दैट इज द प्रोसीजर, ही कन्फर्म्ड। सीइंग द स्टंड लुक ऑन अवर फेस ही रिलेंटेड बट सेड दैट वी शुड ऑब्जर्व एकादशी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे एंड देन अगेन टुमारो ऑन द्वादशी। सो अगर कोई एकादशी का पालन करने में कुछ गलती हो जाता है तो प्रभुपाद बोल रहे हैं यहां पे कि एटलीस्ट वो एकादशी तो चालू रखिए, ऐसा नहीं कि अभी एक बार खाया तो अभी हो गया अभी। लेकिन उसका पालन आगे होना चाहिए और दूसरे दिन वापस फिर एकादशी का पालन कर सकते हैं। तो ये जो आज का जो पांडव एकादशी है, उस दिन हम भीम से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे अलग अलग भक्त हैं, तो जो जब हम एकादशी का पालन करते हैं तो उससे भक्ति में बहुत हमको मदद होता है, क्योंकि माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, सिर्फ पालन करी नहीं, इसे विद ग्रेट यत्न विद ग्रेट एंडेवर वी शुड ट्राई टू फॉलो। तो जितना हम प्रयास से इसका आचरण करने का अनुष्ठान करते हैं तो उससे उतना हमको फायदा होता है भक्ति में। और चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है कि कैसे उसका पालन करना है, कितना हाउ मच स्ट्रिक्टली वी शुड ऑब्जर्व, कितना हम दृढ़तापूर्वक उसका आचरण कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं। और प्रभुपाद ने भी हमको उनके आचरण से सिखाया कि एकादशी का कितना महत्व है और हमको कैसे वो पालन करना चाहिए। और अगर पालन करने में कुछ बाधा होता है, गलती होता है, तो उसका भी निराकरण क्या है। तो एक ये सबके लिए बहुत एक महत्वपूर्ण सूचना है, यह है परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज के हेल्थ के विषय में। प्लीज प्रे फॉर हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज हेल्थ करंटली इन अ क्रिटिकल सिचुएशन। डियर डिवोटीज अराउंड द वर्ल्ड, प्लीज एक्सेप्ट अवर हम्बल ओबेसेंसेस। All glories to Srila Prabhupada. As you may know, His Holiness Jayapataka Maharaj's health is not so good. Indeed, we have to unfortunately inform you that he is currently in a critical situation. He is in ICU of the ILBS hospital in New Delhi. One simple request to all of you is to kindly pray to Srila Prabhupada and Lord Krishna for Maharaj's well-being. It is by the prayers of the devotees that the most auspicious outcome are achieved. And while no one can know the plan of the Lord, even though great philosophers inquire exhaustively and remain bewildered. Nahi asya karhichit rajan puman veda vidishtitam yat vijinasya yukta mukhyanti kavayopihi. The fact remains that devotee can appeal to the Lord with their sincere prayers for the well-being of other devotees. His Holiness Jayapataka Maharaj has not requested us to pray for him, but as he is such a senior devotee who has done so much for Srila Prabhupada's mission and of course had so much intimate association with his divine grace, we feel we must take this request on Maharaja's behalf. Srila Prabhupada once wrote, "I came here to America with a great mission to execute my spiritual master's order, but my heart is stabbing me. If I die in this condition, my mission will remain unfulfilled. Please therefore pray to Prabhu, Lord Chaitanya, and Vrindavan Bihar, Krishna, to rescue me this time. My mission is still not finished." Letter to Sri Krishna Pandit, 1967. We are all so thankful that Lord Krishna allowed Srila Prabhupada to remain with us for another 10 years and achieved so many extraordinary feats in the mission of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Likewise, if the Lord decides to allow Maharaj to remain with us, he can continue to build on all the wonderful successes he has achieved on behalf of Srila Prabhupada. Therefore, we are sincerely and humbly urging you all to offer your prayers for the well-being of His Holiness Jayapataka Maharaj, whatever the plan of the Lord may be. Thank you. Your servants, Praghosh Prabhu, Shesha Prabhu and Bhakti Charu Swami. तो जयपताका महाराज जी का जो स्वास्थ्य है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो भक्त लोग जब प्रार्थना अर्पण करते हैं तो भगवान भी उसको उसके साथ आदान प्रदान करते हैं. तो आज का ये बहुत विशेष दिन है पांडव एकादशी का. तो जो भी हम आज के दिन जो आध्यात्मिक क्रियाएं करेंगे वो हम जयपताका महाराज जी को अर्पण कर सकते हैं. तो उससे हम इतना ही चाहते हैं कि जैसे प्रभुपाद आगे उनके जो सेहत था, उनको जब ठीक हुआ तो उन्होंने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए. 10 साल में ऐसा आध्यात्मिक आंदोलन उन्होंने उठाया पूरा. वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं कि परम पूज्य महाराज जी का भी स्वास्थ्य ठीक हो और वो भी प्रभुपाद के ये जो संस्था है उसमें और चार चांद लगाए. उसे प्रभुपाद जी और राधा रास बिहारी बहुत प्रसन्न होंगे. तो जो भी हम आज कर रहे हैं वो हम महाराज जी को अर्पण कर सकते हैं उनके सेहत के लिए. जयपताका स्वामी महाराज की. श्रील प्रभुपाद की. श्रीमद्भागवतम की. श्रील प्रभुपाद लीलामृत की. हरे कृष्ण.